नमस्कार भारत, तारीख 14 दिसंबर दिन गुरुवार, मैं हूं वात्सल्य राय। गुजरात विधानसभा चुनाव में आज दूसरे दौर का मतदान, सुबह 8 बजे से 93 सीटों पर वोटिंग। अपडेट के लिए सीधे चलेंगे अहमदाबाद।
वोट देने जाना है, जरूरी है, माहौल अच्छा है, माहौल में कोई तकलीफ नहीं है।
बैंक खातों को आधार से जोड़ने की डेडलाइन बढ़ी, सरकार के फैसले पर क्या कहते हैं अर्थशास्त्री?
अगर लोगों के बैंक अकाउंट ही उन तक नहीं पहुंच पाएंगे तो उससे अर्थव्यवस्था में भी बुरा प्रभाव पड़ सकता था।
और दुनिया जहान में पड़ताल, यरूशलम को इसराइल की राजधानी की मान्यता देने के अमरीकी फैसले के विरोध से क्या है हासिल?
या तो कि सारे के सारे मुस्लिम मुल्क की लीडरशिप इनका ही ब्रेन डेड है कि वो कोई कोहेसिव पॉलिसी नहीं।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिनेश उप्रेती से। गुजरात में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम दौर के लिए आज वोट डाले जाएंगे। 182 सदस्यीय विधानसभा के अंतिम चरण में 93 सीटों के लिए कुल 851 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इनमें 782 पुरुष और 69 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। चुनाव आयोग के अनुसार सभी सीटों पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। पहले चरण में 9 दिसंबर को 89 सीटों के लिए मतदान हुआ था। वोटों की गिनती 18 दिसंबर को होगी। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरिजा मे को ब्रेक्सिट बिल के दूसरे पड़ाव में संसद में बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। कंजर्वेटिव पार्टी के असंतुष्ट सांसदों ने टेरिजा मे के बिल के खिलाफ संशोधन पेश किया था, जिसके तहत ब्रेक्सिट डील पर ब्रितानी संसद की मंजूरी को अनिवार्य किया जाना था। असंतुष्ट सांसदों ने सिर्फ 4 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। ब्रिटेन को मार्च 2019 में यूरोपीय संघ से अलग होना है। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में 0.25% की बढ़ोतरी कर दी है। फेडरल रिजर्व ने इस साल तीसरी बार ब्याज दरें बढ़ाई हैं। इसके साथ ही बैंक ने आर्थिक ग्रोथ का अनुमान भी बढ़ाया है। बैंक का कहना है कि 2017 और 2018 में अमेरिका की GDP ग्रोथ 2.5% रह सकती है। केंद्रीय बैंक की प्रमुख जेनेट एलन ने कहा, आज फेडरल रिजर्व की ओपन मार्केट कमेटी ने ब्याज दरें 0.25% बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब ब्याज दर 0.25% से बढ़कर 1.5% हो गई है। उम्मीद है कि हमारे इस फैसले से रोजगार, बाजार और आर्थिक स्थिरता को मजबूती मिलेगी। ये थे फेडरल रिजर्व की प्रमुख जेनेट येलन के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। अमेरिकी प्रांत अलाबामा में ट्रंप समर्थित रॉय मूर की हार के बाद डेमोक्रेट सांसदों ने टैक्स सुधारों पर अंतिम वोटिंग को टालने की मांग की है। डेमोक्रेटिक पार्टी के डग जोन्स की जीत के साथ ही सीनेट में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच अंतर 51-49 का हो गया है। सीनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता चक शूमर ने कहा है कि डग जोन्स के सांसद के रूप में कार्यभार संभालने के पहले टैक्स सुधारों पर वोटिंग कराना गलत होगा। इसके कुछ ही देर बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वो चाहेंगे कि सीनेट में इस मुद्दे पर अगले हफ्ते वोटिंग हो। उन्होंने कहा,
I think it's very important for the country to get a vote next week, not because we lost a seat.
देश के लिए यह बहुत आवश्यक है कि वोटिंग अगले हफ्ते हो, इसलिए नहीं कि हमने सीट गंवा दी है। मुझे पता है कि कई रिपब्लिकन अलग अलग तरह से सोच रहे होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ये सीट हासिल करना चाहता था। मुझे नहीं पता कि सीनेट में वोटिंग के दौरान क्या होगा, लेकिन इतना तय है कि हम वोटिंग कराने जा रहे हैं। ये थे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। सीरिया की सरकारी मीडिया और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि अमरीकी नेतृत्व वाली गठबंधन सेना ने पूर्वी प्रांत में हवाई हमले किए हैं। दार अल जौर में हुए हवाई हमलों में कम से कम 25 लोगों के मारे जाने की खबर है। सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने इसे नरसंहार बताया है। हवाई हमला जिस गांव पर हुआ उसका नियंत्रण तथाकथित इस्लामिक स्टेट के हाथ में है। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने एक बार फिर गठबंधन सरकार बनाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। मर्केल ने अपने पूर्व सहयोगी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के मार्टिन सुल्ज के साथ बैठक कर रही हैं। सितंबर में हुए चुनाव में मिली पराजय के बाद सुल्ज ने कहा था कि वह मर्केल के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में शामिल नहीं होंगे। इसराइली सेना ने कहा है कि इस्लामिक समूह हमास ने गजा पट्टी से इसराइल की तरफ 4 और रॉकेट दागे हैं। BBC समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल और फेसबुक पर भी सुन सकते हैं लाइव। सुबह के 6:34:47 हुए हैं, दिल्ली का तापमान है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया आज गुजरात के पारे की ऊंचाई नापना चाहती है। दिलचस्पी वायुमंडल का तापमान जानने की नहीं बल्कि राजनीतिक गर्मी आंकने की है। लेकिन क्यों, ये समझना मुश्किल नहीं।
यहाँ पर जन्म हुआ था बापू के आजादी, सत्याग्रह, अहिंसा और शांति जैसे महान विचारों।
आम मणिशंकर ना करे मीटिंग मणी मीटिंग 3:40
GST गब्बर सिंह टैक्स।
गुजरात के चैनल्स पे इंटरव्यू देना, गुजरात में इंटरव्यू देना, मेरे ख्याल से जितनी हमें समझ है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की, उसमें आखिरी के 48 घंटे में परमिटेड नहीं है।
ये दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। अगर मापदंड ये है तो सबसे पहली FIR प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर और सभी भाजपा नेताओं पर होनी चाहिए।
गुजरात में नई विधानसभा गठन के लिए हो रहे चुनाव में आज दूसरे दौर का मतदान होना है और ये आवाजें जो अभी आपने सुनी और जो तेवर आपने महसूस किए होंगे उसने राजनीतिक जमीन की तपिश बढ़ा दी है। पहले दौर में 9 दिसंबर को 89 सीटों पर वोट डाले गए थे, आज 93 सीटों पर वोटिंग होगी। नेताओं ने प्रचार में पूरा जोर लगाया, मुद्दे इतनी तेजी के साथ बदले, सवाल और आरोप इतनी जोर से उठे कि गुजरात भारतीय राजनीति का सबसे दिलचस्प अखाड़ा बन गया। हमारे साथी रजनीश कुमार अहमदाबाद में मौजूद हैं और अभी फोन लाइन पर हमसे जुड़ चुके हैं। रजनीश, वोटिंग 8 बजे से शुरू होनी है, अभी कैसी हलचल आप वहां देख रहे हैं? शहर जो है वो अलसाया है या फिर वोटर उत्साहित हैं?
नहीं नहीं, वास्तव में शहर जाग चुका है और लोगों में उत्साह है। आप अगर 2012 का चुनाव देखें तब भी लोगों में उत्साह था और तब 72.64% लोगों ने वोट डाला था और इस बार चुनाव जो है उत्तरी गुजरात और मध्य गुजरात में है। पिछली बार का जो चुनाव था उसमें कांग्रेस ने 39 सीटें जीती थी 93 सीटों में और बीजेपी ने 53 सीटों पर बाजी मारी थी।
जी, लेकिन 9 तारीख को जो वोटिंग हुई थी उसमें 2012 के मुकाबले मतदान का प्रतिशत कम रहा था। आज आपने सुबह कुछ वोटरों से बात की? जी,
बात पहले बहुत थोड़ा कम था, बहुत ज्यादा कम नहीं था, लगभग 2% का फर्क था।
जी रजनीश, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चुनाव में नंबरों की अपनी अहमियत होती है। स्टूडियो में मौजूद हमारे साथी दिनेश उप्रेती भी दूसरे दौर के मतदान से जुड़े कुछ दिलचस्प आंकड़े लिए बैठे हैं। दिनेश जी, श्रोताओं के साथ भी ये आंकड़े साझा कीजिए।
जी वात्सल्य जी, अब से कुछ ही देर में कुल 14 जिलों में गुजरात में मतदान होगा, 93 सीटों के लिए वोट पड़ेंगे और करीब 2.25 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। पुरुष और महिला मतदाताओं की बात करें तो इनमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। जहां महिला मतदाताओं की संख्या 1.07 करोड़ के करीब है, वहीं पुरुष मतदाताओं की संख्या 1.15 करोड़ के करीब है। कुल उम्मीदवारों की बात करें तो इनकी संख्या है 851, इनमें से 69 महिलाएँ हैं। सबसे ज़्यादा उम्मीदवार मेहसाणा से हैं और जहाँ उनकी तादाद है 32। झालोद जो विधानसभा है उसमें सबसे कम उम्मीदवार हैं और उनकी संख्या है 2, यानी कि वहाँ आमने सामने का मुकाबला है।
जी,
खास बात यह है कि इस चरण में लगभग आधे मतदाता ऐसे हैं जिनकी उम्र 40 साल से कम है और 25 साल तक के युवा मतदाताओं की तादाद 15% के लगभग है। कुल मतदान केंद्रों की बात करें तो 25,558 मतदान केंद्र हैं और 28,154 EVMs का इसमें इस्तेमाल होगा। इस चरण की सबसे छोटी विधानसभा है दरियापुर, जो कि 6 वर्ग किलोमीटर में फैली है, और सबसे बड़ी विधानसभा है राधनपुर, जिसका इलाका 2544 वर्ग किलोमीटर का है। आबादी के लिहाज से सबसे छोटी विधानसभा है लीमखेड़ा और सबसे छोटी घाट लोडिया।
जी आंकड़े बड़े दिलचस्प हैं दिनेश जी, और जो आवाज़ें हमारे पास रजनीश ने भेजी है वोटरों की, वोटर भी बड़े उत्साहित दिखाई देते हैं, आवाज़ से कम ऐसा ही लगता है। सुनिए ये आवाज़ें।
वोट देने जाना है, जरूरी है, माहौल अच्छा है, माहौल में कोई तकलीफ नहीं है। जो रसाकसी का मामला है लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है,
कटौती का माहौल लग रहा है, भाजपा या कांग्रेस आ गया था।
वोटर अपनी बात रख रहे हैं। दूसरे चरण में जिन सीटों पर वोटिंग होनी है वहां कई दिग्गजों की साख भी दांव पर है। इस चरण की कितनी अहमियत है हमारी सहयोगी मानसी दास ने ये सवाल किया अहमदाबाद में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार दर्शन देसाई से।
काफी सारा बीजेपी के स्ट्रांग होल्ड वाले एरिया में इलेक्शन होने जा रहे हैं। अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट है, बड़ौदा में 6-7 सीटें हैं, ये जो है स्ट्रांग एरियाज हैं। जैसे अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में 21 सीटें हैं, तो सेंट्रल गुजरात तो ये हुआ। नॉर्थ गुजरात में कांटे की टक्कर रहेगी इस बार। उत्तर गुजरात वैसे तो भाजपा का गढ़ माना जाता है, इस बार देखना होगा कि क्या होगा, क्योंकि वहां पर ओबीसी वाला अल्पेश ठाकुर वाला फैक्टर भी है और हार्दिक पटेल वाला फैक्टर भी वहां पर है। पाटीदार का एजुटेशन, पाटीदार की जो पूरा जो मुहिम पाटीदारों की शुरू हुई थी वो नॉर्थ गुजरात से ही हुई। हार्दिक पटेल को सौराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स उनको उत्तर गुजरात में मिला है, उसके बाद सूरत शहर में मिला था। सबसे इंटरेस्टिंग भी यही रहेगा, क्योंकि नॉर्थ गुजरात रीजन जो है वो नरेंद्र मोदी जी का रीजन है, अमित शाह जी का रीजन है।
जो सेकेंड चरण के चुनाव होने वाले हैं उनमें इस बार कौन से मुद्दे हैं जो चुनाव पर सबसे अधिक असर डाल सकते हैं?
एक तो पाटीदार वाला इशू यहाँ पर भी है, खास करके नॉर्थ गुजरात एरिया में बहुत बड़ा है। हार्दिक पटेल वो बेकारी की बात कर रहे हैं, जो सही में सीरियस इशू है, और उसी के कारण इतने सारे जो खास करके जवान लड़के लड़कियां उसकी रैली में आते हैं, और वो हर कौम से आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाटीदार लड़के लड़कियां ही उसकी रैली में आते हैं, ठीक है। और किसानों के भी सौराष्ट्र जितने शायद सीरियस इतने ना हो, लेकिन किसानों के जो इशू हैं, किसानों को दाम नहीं मिल रहा है, वो सारे मुद्दे यहाँ पर भी है। यहाँ पे आदिवासी सीट भी है, पंचमहल दाहोद बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट की, छोटा उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है। आदिवासियों में कांग्रेस का अभी भी अच्छा माना जाता है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि मध्य गुजरात जो है उसको आप 50-50 कह सकते हैं, और उत्तर गुजरात जो है वो बहुत कांटे की टक्कर कह सकते हैं।
पिछली बार के विधानसभा चुनाव को देखें तो इस बार मुकाबला कितना बड़ा है?
ये करीब पिछले 20-25 साल में पहली बार ऐसा लग रहा है कि चुनाव हो रहा है, और पहली बार कांग्रेस जो है एक संगठित पार्टी के रूप में बाहर आई है।
और इस बार अल्पेश ठाकुर, हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवाणी तीनों की साख दांव पर लगी है।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और तीनों अल्पेश ठाकुर भी वहीं से खड़े हैं, जिग्नेश मेवाणी भी नॉर्थ गुजरात से खड़े हैं, ठीक है, और हार्दिक पटेल का पाटीदारों की शुरू हुई थी वो नॉर्थ गुजरात से ही हुई।
चुनाव के चक्रव्यूह में कौन घिरा है कौन घेर रहा है ये कुछ साफ नहीं है। ये थे दर्शन देसाई। शुरुआत में हमने आपको केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला की आवाजें सुनवाई थी। गोयल ने कल राहुल गांधी की चुनाव आयोग से शिकायत की, जिसे लेकर राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है। उसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने भी चुनाव आयोग से मुलाकात की। पूरे प्रकरण पर बीबीसी संवाददाता मानसी दास ने राजनीतिक विश्लेषक आर के मिश्रा से बात की, सुनिए वो क्या कहते हैं।
धज्जियां उड़ रही हैं इस इलेक्शन कैंपेन में आचार संहिता की, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने धज्जियां उड़ा दी हैं। अगर वो अब इस वक्त ये इन चीजों की बातें कर रहे हैं तो ये तो हास्यास्पद सी चीज है। आज के गुजरात समाचार में ही फ्रंट पेज पे जो बीजेपी की एड छपी है उसमें ही जो है ये बड़ा क्लियर लिखा है कि मनीष शंकर अय्यर ने कहा था कि ये नीच व्यक्ति हैं। प्रधानमंत्री जी ने उसको ट्विस्ट करके और नीच जाति बना दिया, और खुद बीजेपी की एड ने वो सारी पोल पट्टी बाहर कर दी। क्या क्या ये चीजें दिखाई नहीं देती? मतलब इलेक्शन आते हैं और चले जाते हैं, तो एक सर्टन डिग्निटी और सर्टन डिग्निटी एंड पोजीशन ऑफ ऑफिस तो आपको मेंटेन करनी चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी की अर्बन वोट बैंक है, अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट, सूरत,
जहाँ पर काफी लंबे वक्त से हिंदुत्व कार्ड खेला जाता रहा है।
हाँ, और खेला जाता रहा है, प्लस तो इनके लिए बड़ी परेशानी भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़ी हो सकती है, क्योंकि पहले चरण में वोटिंग जो है इनके फेवर में रूरल एरियाज में से नहीं गया है। तो इस वजह से इन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने ये डेस्परेट सिचुएशन का कार्ड खेला है, ताकि अगर अर्बन वोट बैंक वो अपनी मेंटेन कर सकें तो ही इस चैलेंज को मीट करके अपने पावर स्ट्रक्चर को किसी भी हाल में उस पर अपने पकड़ बनाए रखें। क्योंकि अगर गुजरात 2017 में भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल गया तो 2019 में प्रधानमंत्री जी भारत की ऊपर से पकड़ गंवा दें।
ये थे आर के मिश्रा। रजनीश, मैं आपके पास आते हुए और ये जानना चाहूंगा कि आप बीते कई दिनों से गुजरात में हैं, लगातार रिपोर्ट भी कर रहे हैं। पत्रकारों का कहना है, राजनीति पर नजर रखने वालों का कहना है कि इस बार का चुनाव जो है पिछले चुनावों से अलग है। आपने कई आम लोगों से भी बात की, उनकी क्या राय है?
बिल्कुल वास्तव में इस बार का चुनाव जो है तो आप पिछले 22 सालों से जो बीजेपी सत्ता में है उससे अलग चुनाव है। लोगों का कहना है कि इस बार कांग्रेस टक्कर दे रही है, लेकिन वास्तव में ये ट्रेंड आपको देखने में मिलेगा कि जो शहरी इलाका है और जो गुजरात के गांव है, अगर आप गांव में जाएं तो जो बीजेपी के भी समर्थक नहीं है, जो कांग्रेस के भी समर्थक नहीं है, वो खामोश रहते हैं। उनको लगता है काम हुआ है या नहीं हुआ है, वो इस तरीके से आचरण करते हैं और खुलकर नहीं बताते कि हम किसको वोट करने वाले हैं। वो कहते हैं कि मुझे जिसको वोट करना हो वो करेंगे, लेकिन अपना गुस्सा जरूर जाहिर करते हैं। वो कहते हैं कि देखो 3 महीने से पानी नहीं आया है, गांव में सड़क नहीं बनी है, बिजली नहीं आती है तो शिकायत बहुत कम गाँव में, लेकिन पानी की शिकायत कई गाँव में मिलती है कि पानी नहीं आ रहा है।
जी जी रजनीश, आज का दिन बड़ा लंबा है आपके लिए भी, वोटरों के लिए भी, 8 बजे से 5 बजे तक। हम अगले कार्यक्रम में फिर लौटेंगे आपके पास, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने बैंक खातों को आधार से जोड़ने की डेडलाइन बढ़ा दी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी एक अहम सुनवाई होनी है। बीबीसी संवाददाता अभिजीत श्रीवास्तव ने सरकार के फैसले को लेकर अर्थशास्त्री रितिका खेड़ा से बात की और पूछा कि क्या सरकार अपने कदम पीछे ले रही है।
जो सुनवाई थी वो केवल इसी के लिए नहीं मांगी गई थी, जो पीठ है 5 जजों की उसके सामने बाकी 22-23 और भी पेटिशन्स हैं जिस पर सुनवाई की जरूरत है। अभी तो सिर्फ उन्होंने बैंक की तारीख हटाई है, लेकिन जनवितरण प्रणाली में, नरेगा में, मध्याह्न भोजन के लिए, पेंशन के लिए, स्कॉलरशिप के लिए, हर चीज के लिए सरकार ने कोई ना कोई डेडलाइन डाली हुई है और इनकी वजह से काफी लोगों को नुकसान हो रहा है। आप जानते होंगे कि 7 भुखमरी से मौतें हो चुकी हैं।
कहीं ना कहीं नोटबंदी, जीएसटी और उसके बाद अब आधार, सरकार के लिए तीनों चीजें मुश्किल तो बन ही रही है।
आपने सही कहा है कि अगर सरकार अभी भी आधार का जो से जो नुकसान है, उससे जो डेंजर्स हैं, अगर उसको नहीं पहचानती तो ये उनकी तीसरी वो मिस्टेक हो सकती है। और आधार अभी भी सरकार को एक मौका है कि वो अपने आप को इससे बचा सके, इससे होने वाले नुकसान को बचा सके। अर्थव्यवस्था को भी नुकसान होने का डर था, क्योंकि अगर लोगों के बैंक अकाउंट ही वो नहीं उन तक नहीं पहुंच पाएंगे तो उससे अर्थव्यवस्था में भी बुरा प्रभाव पड़ सकता था। उससे तो चलो अभी बच गए, लेकिन इस ग्रामीण क्षेत्रों में देख रहे हैं लोग कैसे दर दर भटक रहे हैं अपनी पेंशन के लिए, राशन के लिए, मध्याह्न भोजन के लिए, तो ये नुकसान मेरे ख्याल से अभी भी हम अपने आप को बचा सकते हैं, बहुत देर नहीं हुई है।
ये थी अर्थशास्त्री रितिका खेड़ा। और अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। यूरोपीय यूनियन से अलग होने की रणनीति को लेकर ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे को संसद में झटका लगा है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे साथी दिनेश उप्रेती।
The eyes to the right, 309. The nose to the left, 305.
यूरोपीय संघ से अलग होने की राह पर आगे बढ़ रहे ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे को ब्रेक्सिट बिल पर जोर का झटका लगा है। झटका देने वालों में बड़ा हाथ उनकी ही कंजर्वेटिव पार्टी के 11 असंतुष्ट सांसदों का है। आखिर तक इन सांसदों को मनाने की कोशिशें की जाती रहीं, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए और नतीजा ये हुआ कि संशोधन के लिए लाया गया बिल 305 के मुकाबले 309 वोटों से पारित हो गया। संशोधन के तहत ब्रेक्सिट पर फाइनल मंजूरी अब संसद ही देगी। खास बात यह रही कि कंजर्वेटिव पार्टी के जिन सांसदों ने सरकार के खिलाफ वोट दिया उनमें से 8 पूर्व मंत्री हैं। ब्रितानी प्रधानमंत्री के लिए ये जोर का झटका माना जा रहा है, क्योंकि पिछले हफ्ते ही ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के बीच ब्रेक्सिट के नियमों को लेकर ऐतिहासिक समझौता हुआ था। इसके बाद यूरोपीय संघ ने घोषणा की थी कि ब्रिटेन के बनाए अपने डिवोर्स बिल, आयरिश सीमा और नागरिकों के अधिकार सहित ब्रेक्सिट से जुड़े मुद्दों पर पर्याप्त प्रगति हुई है। सदन में हार से सरकार की फजीयत तो हुई ही है, ब्रेक्सिट पर सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्यों के बीच मतभेद भी खुलकर सामने आ गए हैं। ऐसे में इतना तो तय है कि ब्रेक्सिट पर टेरेसा मे की आगे की राह आसान कतई नहीं होगी।
रिपोर्ट सुना रहे थे दिनेश उप्रेती, और अब दिनेश जी ही हमें बताएंगे कि आज दिल्ली से छपे अखबारों की सुर्खियाँ क्या हैं।
जी, फिक्की की सालाना बैठक कल थी और इसमें प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को कई अखबारों ने अपनी सुर्खी बनाया है। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने यूपीए और फिक्की पर वो जमकर बरसे और उन्होंने कहा कि यूपीए के दौरान कुछ बड़े उद्योगपतियों को लाखों करोड़ों का लोन दिया गया। उन्होंने इसे 2G और कोयला घोटाले से भी बड़ा घोटाला
इसे लेकर ये कांग्रेस इलेक्शन कमीशन तक गई थी।
जी, आधार को बैंक खाते से लिंक कराने की डेडलाइन बढ़ाए जाने की खबर भी कई अखबारों के पहले पन्ने पर है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज से सुनवाई शुरू हो रही है।
जी,
मथुरा में पुलिस की वर्दी पर कृष्ण का वैज लगेगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने वृंदावन को पवित्र नगरी घोषित किया था और इस तरह की खबरें भी कई अखबारों में हैं। द हिंदू ने रोहित शर्मा की 153 गेंदों पर 208 रनों की नाबाद पारी को पहले पन्ने पर जगह दी है। हेडलाइन है, द किंग ऑफ बिगिनिंग्स,
तीसरी उनके डबल सेंचुरी वनडे में।
जी, देश के कई बड़े बिटकॉइन एक्सचेंज पर इनकम टैक्स के छापों की खबर को भी नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स ने प्रमुखता से छापा है। अमरनाथ में जयकारों पर एनजीटी की रोक, इस खबर को नवभारत टाइम्स और हिंदुस्तान ने सुर्खी बनाया है। खबर के मुताबिक एक खास पॉइंट के बाद जयकारा लगाने और घंटी बजाने पर रोक लगा दी गई है।
जी, बहुत शुक्रिया दिनेश जी अखबारों की समीक्षा के लिए। और अब दुनिया जहां, बीते सप्ताह जब से अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि वो यरूशलम को इसराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता देंगे, तब से मुस्लिम देशों और यूरोप की राजनीति गर्म है। ट्रंप की इस घोषणा के क्या मायने हैं और इससे दुनिया में अस्थिरता का माहौल क्यों पैदा हो रहा है? साप्ताहिक कार्यक्रम दुनिया जहान में हमारे साथी मोहनलाल शर्मा आज इसी की पड़ताल कर रहे हैं।
दुनिया जहां।
I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel.
अमेरिका यरूशलम को इसराइल की राजधानी के रूप में मान्यता देता है। अमेरिकी दूतावास को तेल अवीव से यरूशलम लाया जाएगा।
To conflict between Israel and the Palestinians.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस घोषणा के साथ ही इसराइल फलस्तीन के बीच जारी दशकों पुराना विवाद फिर से हरा हो गया। जाहिर है अमेरिका की इस घोषणा का इसराइल को तो स्वागत करना ही था, पर गजा में हमास नेता इस्माइल हनिया ने इसराइल के खिलाफ फलस्तीनियों के संघर्ष की घोषणा कर दी।
मुतालबीन بتمكين المقاومه في الضفه الغربيه
हमें पश्चिमी तट में प्रतिरोध संगठित करना होगा ताकि इस खुले हमले का जवाब दिया जा सके। ये फलस्तीनी जनता के खिलाफ युद्ध की घोषणा है। इसके जरिए मुसलमानों और ईसाइयों के पवित्र स्थल को निशाना बनाया गया है। ये फलस्तीनियों के धड़कते दिल यानी यरूशलम पर चाकू घोंपना है।
इन्ना नुतालिब वनदउ बल वनअमल वसनअमल।
साथ ही शुरू हो गया विरोध प्रदर्शनों का दौर। विरोध की आवाजें न सिर्फ मुस्लिम देशों से आईं, बल्कि यूरोपीय देशों की ओर से भी आईं। यूरोपीय संघ ने कहा कि वो यरूशलम को इसराइल की राजधानी नहीं मानेंगे। दरअसल फलस्तीन इसराइल विवाद के केंद्र में प्राचीन यरूशलम शहर ही है। यहाँ की स्थिति में बहुत मामूली बदलाव भी कई बार हिंसक तनाव और बड़े विवाद का रूप ले लेता है।
विवाद के जड़ पर जो है वो पूर्वी यरूशलम का इलाका है, जो कि 1967 के युद्ध में इसराइल के कब्जे में आया। उसके पहले वो जॉर्डन के कंट्रोल में था। ये वो इलाका है जो कि ओल्ड सिटी का एक पूरा दीवार है उस, और ये जो तीन जो धर्म स्थल हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से करीब है, और खास करके जो मस्जिद और वेस्टर्न वॉल जो यहूदी धर्म का मुख्य धर्म स्थल है, और अलक्षा मॉस्क जो है उनकी दीवार जो है वो कॉमन दीवार है।
इसराइल के साथ अमेरिका के रिश्ते काफी पुराने और जग जाहिर हैं, पर ट्रंप के पहले इतने राष्ट्रपति आए लेकिन किसी ने भी इस तरह का कदम नहीं उठाया। अमेरिका की डेलावेयर यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रोफेसर मुक्तदर खान से मैंने पूछा कि आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप चाहते क्या है।
यरूशलम के मामले में तो इट इज नॉट वेरी क्लियर कि वो टू स्टेट सॉल्यूशन चाहते हैं या नहीं चाहते। क्या ये एक ओपनिंग गैम्बिट है ताकि इसके बेसिस पे वो इसराइल से ज्यादा कंसेशन मांगेंगे टूवर्ड्स मेन पीस प्रोसेस, क्या ये चीज आगे बढ़ेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर आप गौर करें, ट्रंप ने कोशिश की है कि उन्होंने जो जो चीजें इलेक्शन के कैंपेन के दौरान प्रॉमिस की, एटलीस्ट सिंबॉलिकली उन चीजों को वो पूरा करना चाह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि वो इसराइल का कैपिटल जेरूसलम को रिकॉग्नाइज करेंगे, और तो अब उन्होंने वो ऐलान कर लिया।
अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप का तर्क है कि इस कदम से मध्य पूर्व में शांति प्रक्रिया तेज होगी और टिकाऊ समझौते का मार्ग प्रशस्त होगा। पर क्या वाकई ये शांति समझौते की राह है या फिर राह का रोड़ा, मैंने मध्य पूर्व की राजनीति पर नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार सईद नकवी से पूछा कि ट्रंप की इस घोषणा के मायने क्या हैं।
इसके मायने ये हैं कि जो पीस प्रोसेस था जिसमें कि जेरूसलम का फाइनल सेटलमेंट जो था उसमें कहां तक ईस्ट जेरूसलम पैलेस्टाइन स्टेट का हिस्सा होगा वो खटाई में इन्होंने डाल दिया है। इसराइल का प्रोटेक्शन अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का अटूट अंग रहा है तो वो इसमें पूरा हो रहा है कि हम अब हमारा झगड़ा जो है वो शिया सुन्नी है उसको हम पहले सॉर्ट आउट कर लें।
मध्य पूर्व के अरब नेताओं का कहना है कि यरूशलम को राजधानी बनाना मुसलमानों को उकसाना होगा और इससे मध्य पूर्व के हालात और बिगड़ जाएंगे। यही नहीं, यूरोपीय देश भी इसकी चेतावनी दे रहे हैं। इससे क्या युद्ध जैसी स्थितियां तो पैदा नहीं हो रही? प्रोफेसर मुक्तदर खान,
मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप इतने बड़ा स्टेटमेंट बगैर सऊदी अरेबिया और इजिप्ट के कंसल्टेशन के वो करेंगे। वो यूरोप को उतना अहमियत नहीं देते हैं, लेकिन आप गौर करें उनको सऊदी अरेबिया के साथ उनको बहुत फायदा हुआ, $400 बिलियन का ट्रेड मिला, तो सऊदी अरेबिया के लिए वो ऑकवर्ड पोजिशन हो गए। लेकिन अरब दुनिया का ये बेट है कि जो अरब पब्लिक है उनको खासतौर से अरब स्प्रिंग के बाद एक किस्म से पैलेस्टाइन फटीग हो गई है। वो चाहते हैं कि जल्द से कुछ छोटा मोटा उनको एक स्टेट दे दें और ये मसला हल कर दें। तो सऊदी अरब मुझे लगता है कि वो एक दो हफ्ते तक जब तक पब्लिक में जोश है चंद बयान देंगे। लेकिन अगर आप देखें जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं मुस्लिम कंट्रीज वगैरह से, उनमें से कोई भी प्रोटेस्ट ऐसा नहीं है जो अमेरिका के ऊपर दबाव डाल सके। या तो कि सारे के सारे मुस्लिम मुल्क की लीडरशिप इंतहाई ब्रेन डेड है कि वो कोई कोहेसिव पॉलिसी नहीं पैदा कर सकती, या वो सीरियस नहीं है अमेरिका के खिलाफ किसी किस्म से पुशबैक का।
राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप के फैसले लगातार विवाद पैदा कर रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम देशों के लोगों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा हो या फिर कोई और। इन्हें लागू करने के लिए ट्रंप को न सिर्फ कानूनी अड़चनों और संवैधानिक मजबूरियों से दोचार होना पड़ रहा है बल्कि उन्हें यहाँ तक कि वापस भी लेना पड़ा है। अब आगे की राह क्या? सईद नकवी,
मुसलमान तो झुके हैं, ये इस वक्त झगड़ा खड़ा करना चाह रहे हैं शिया सुन्नी, ईरान बनाम सऊदी अरेबिया, ये एक लाइन बन जाए जिसमें कि ये एक तरफ है और जिस तरफ है उधर पैसा बहुत है और उनके पास लड़ाइयां बहुत सी हैं, तो वो जो चाहे हैं। खिरद का नाम जुनू पड़ गया, जुनू का खिरद, जो चाहे आपका उसने करिश्मा साज करे। अब ये कल बदल जाएंगे, इन्होंने बिल्कुल ये तय कर लिया है कि अपनी व्हाइट ओनली कंस्टिट्यूएंसी और एंग्लो जुडेइक कंस्टिट्यूएंसी, पूरा जो इजरायली लॉबी है 100% हमारे साथ हो और बाकी देखेंगे।
तो इसराइल यरूशलम विवाद इस समय दुनिया का सबसे ज्वलंत मुद्दा है, लेकिन अभी इसमें और मोड़ और पेच आने बाकी हैं।
दुनिया जहान पेश कर रहे थे मोहनलाल शर्मा। आप इस कार्यक्रम पर अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें और आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़े विश्लेषण और अपडेट bbchindi.com पर आप लगातार देख सकते हैं। वक्त विदा लेने का हो रहा है, लेकिन पहले मुख्य समाचार एक बार फिर दिनेश उप्रेती से।
बीबीसी समाचार। गुजरात में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम दौर के लिए आज वोट डाले जाएंगे। 182 सदस्यीय विधानसभा के अंतिम चरण में 93 सीटों के लिए कुल 851 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरिजा मे को ब्रेक्सिट बिल के दूसरे पड़ाव में संसद में बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। विद्रोही सांसदों ने सिर्फ 4 वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। अमरीका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में 1/4% की बढ़ोतरी कर दी है। फेडरल रिजर्व ने इस साल तीसरी बार ब्याज दरें बढ़ाई हैं। अमरीकी प्रांत अलबामा में ट्रंप समर्थित रॉय मूर की हार के बाद डेमोक्रेट सांसदों ने टैक्स सुधारों पर अंतिम वोटिंग को टालने की मांग की है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन किया दीपक जसरोटिया ने। फेसबुक लाइव आप तक पहुंचाया गुरप्रीत कौर ने। शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी आपसे अगली मुलाकात। तब तक देश दुनिया की खबरों के लिए आपके साथ है bbchindi.com का पन्ना। वात्सल्य राय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।